ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੰਬੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਵਾਂ
ਸਲੋਕ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਉਕਤ ਅਰਥ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਸਵੱਛਤਵਾਤ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੇ ਸੇ ਕੁੰਡਿਆ ਸਾਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਸਵੱਛ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਸਵੱਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਵਾਲ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਅਵਛਿੰਨ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਬਣੇਗਾ ਅਸਵਸਥ ਹੋਣੇ ਸੇ ਘੱਟ ਅਥਵਾ ਦੀਵਾਲ ਆਦਿ ਸੇ ਅਵਛਿੰਨ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਵਛਿੰਨ ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲ ਅਵਛਿੰਨ ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਅਵਛਿੰਨ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਬਣੇਗਾ ਅੰਤਾਕਰਨ ਅਵਛਿੰਨ ਚੇਤਨ ਘੱਟ ਅਵਛਿੰਨ ਚੇਤਨ ਦੀਵਾਲ ਅਵਛਿੰਨ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਇਤਿ ਚੇਤ ਜਦਿ ਐਸਾ ਕਹਤੇ ਹੋ ਤੋ ਤਥਾ ਅਸਤੂ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਔਰ ਘੱਟ ਆਦਿ ਮੈਂ ਅਸਵੱਛਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰਿਛੇਦੇ ਸਵੱਛੇਨ ਪਰੰਤੂ ਪਰਿਛੇਦ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਸਵੱਛਤਾ ਔਰ ਤਬ ਕਿਮ ਭਵੇਤ ਤੁਮਾਰਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪਰਿਛਿੰਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਸਵੱਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏਗਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸਥੇ ਨਾ ਦਾਰੂ ਜੰਨੇ ਨਾ ਕਾਂਸਿਆ ਜੰਨੇ ਨਾ ਵਾ ਨਾਹੀ ਵਿਕਰੇ ਤੂ ਤਾਂਡੁਲ ਦੀ ਨਾਮ ਪਰਿਣਾਮਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰੂ ਜੰਨੇ ਕਾਂਸਿਆ ਜੰਨੇ ਦਾਰੂ ਮਣੇ ਲੱਕੜੀ ਲੱਕੜ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜੀ ਕਾਠ ਕਾਠ ਮਣੇ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨਤਰੀ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਲ ਪੇ ਪੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਪ ਭਰਮ ਭਾਉ ਦੂਰ ਕੀਜੇ ਕਾਸ਼ਟ ਮਣੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾਰੂ ਮਣੇ ਲੱਕੜੀ ਕਾਸ਼ਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਥਵਾ ਕਾਂਸੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸਥ ਸੇ ਤੋਲਣੇ ਕੇ ਪਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇ ਪ੍ਰਸਥ ਮਣੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੀਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੰਨੇ ਟੀਨੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਟੀਨੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਟੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਐਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਸਥ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਸਥ ਹਾਂ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਲਣੇ ਕੇ ਪਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰੇਤੂ ਤੁੰਦਲਾ ਦੀ ਨਾਮ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਅਨਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤਾਤਪਰਯ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥ ਕੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਸਵੱਛਤਾ ਅਨਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੈਂ ਕਭੀ ਵੇਸ਼ੀ ਕਾ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ ਜਦੋਂ ਤੋਲਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਹੈ ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ वचन भी उन्ना ही होगा। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਹੀ ਤੋਲਣਾ। ਨਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਲਣਾ, ਨਾ ਘੱਟ, ਨਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੋਲਣ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਪ੍ਰਸਤ ਚਾਹੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ, ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ?
ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ,
ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਾਂਸੇ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤ ਮੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਅਧਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋ ਤੋ ਹੋਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਬ ਤੋ ਬੁੱਧੀ ਮੇਂ ਵੀ ਚਿਦਾਭਾਸ ਕੋ ਆਪਨੇ ਮਾਨ ਹੀ ਦਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਹੈ ਪਾਤਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੋਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ, ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਿਤਨਾ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕੁਛ ਵਸ਼ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਘਟੀਆ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਘਟੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਦਾਭਾਸ ਤੋਂ ਮਾਨ ਹੀ ਲਿਆ। ਪਰਿਣਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤੇ ਕਾਂਸੇ ਜਦੀ ਤਦਾ ਬੁੱਧਿਆ ਪਿਆ ਬਾਸੋ ਭਵੇਤ ਬਲਾਤ, ਬਲਾਤ ਮੈਂ ਜਬਰਦਸਤ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੀ ਬਲਾਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਬਲਾਤ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਕਾਂਸੇ ਕਾਂਸੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤ ਮੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ ਅਪੀ ਤਾਂਡੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਅਧਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੂਪ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਉਹ ਉਤਨੇ ਹੀ ਤੋਲੇਗਾ ਜਿਤਨੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲਾ ਤੋਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪਏਗੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਚ, 5 ਕਿਲੋ ਪਏਗੇ ਕਾਂਸੇ ਵਾਲੇ ਚ। ਚਾਵਲਾ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਚ ਫਰਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਲੱਗਦਾ,
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੂਪ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ ਜਦੀ ਤਦਾ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਤਬ ਤੋ ਬੁੱਧੀ ਅਪੀ ਅਭਾਸਾ, ਬੁੱਧੀ ਮੇਂ ਵੀ ਚਿਦਾਭਾਸ ਬਲਾਤ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੇ ਅਰਥਾਤ ਅਨਿੱਛਾ ਸੇ ਵੀ ਭਵੇਦ ਹੋਗਾ ਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਚਿਦਾਭਾਸ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਮਾਨਣਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਵਲ ਤੇ ਓਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਤਾਕਰਨ ਅਵਸ਼ਿਨ ਚੇਤਨ, ਦਵਾਰ ਅਵਸ਼ਿਨ ਚੇਤਨ, ਗੱਟ ਅਵਸ਼ਿਨ ਚੇਤਨ, ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੀ, ਪਰ ਜੀਵਪਣਾ ਖਾਲੀ ਚਿਤਾਭਾਸ ਮੇਂ ਆਏਗਾ। ਅੰਤਾਕਰਨ ਅਵਸ਼ਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਤੇ ਤਿੰਨੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰਾ ਅਵਸ਼ਿਨ ਜੀਵ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਂਸੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤ ਮੇਂ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪਰ ਚਿਦਾਭਾਸ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੈਸੇ ਸਿੱਧ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਭਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं कि प्रतिबिंब शब्द और आभास शब्द का अर्थ एक ही है, एक गलती ही नहीं रहेगा कि आभास चीज और है, प्रतिबिंब चीज और है। वो आभास कहो चाहे प्रतिबिंब कहो, उसको चीज है, एक वस्तु के दो नाम, चाहे प्रसादा कहो चाहे रोटी कहो। पता आभास का अंगीकार सिद्ध हो सकता है, ईषद भाष नामा भाषा प्रतिबिंब तथा विदा विलक्षणहीन। देखो क्या बिंब लक्षणहीन, बिंब का ओदे विच कोई लक्षण नहीं है, बिंब का जेडे बिंब दे लक्षण है वो प्रतिबिंब विच नहीं है। बिंब लक्षणहीन सन बिंब वद भासते साही, बिंब लक्षण तो हीन है पर बिंब वद भासते, बिंब की तरह प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। लग रहा है ना संस्कृत अर्थ कैसे, बिंब विलक्षण ही बिंब लक्षण ही ना, बिंब का कोई लक्षण नहीं ओदे विच, किहदे विच प्रतिबिंब विच सन बिंब वद भासते साही, सामने वो जरा है वो बिंब की तरह प्रतीत हो रहा है पर बिंब का लक्षण ओदे विच कोई नहीं है। लक्षण मैंने गुण जेडे बिंब विच गुण है वो ओदे विच नहीं है, किहदे विच प्रतिबिंब विच। ईषद भाषण अल्प अर्थात बिंब में भिन्न होकर चेतन की तरह जो भासता है अभासा, उसको चिदाभास कहते हैं। राम जी बिंब से भिन्न होकर चेतन की तरह जो भासता है उन्होंने कहते प्रतिबिंब, अभास कह लो या प्रतिबिंब कह लो चिदाभास कह लो, चिदाभास ही कहते चेतन की तरह भाग रहा हूं काम चिदाभास कह देंगे।
चिदाभास तो
हां जी
चिदाकाश
चित्तकाश
चित्तकाश
चित्तकाश चिताकाश स्वर्ण दीर्घ हो गया था चिराकाश कह देंगे।
ओ
चीज है चिताकाश
चित्त
के बीच आकाश है वो शुद्ध चेतन हो गया ना। योग विशिष्ट में कैसे शब्द होंगे योग विशिष्ट के शब्द है जो किसी बोले
होर
की ओही तो ब्रह्म चित्त आकाश
चाहे है आकाश हो पर
आकाश ता कह देंगे जैसे सर्वत्र आकाश व्यापक है ना ऐसे चित्त में भी आकाश व्यापक है तो जैसे सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है आकाश चित्त में है तो ब्रह्म चित्त में नहीं होगा
शब्द ही गुरु है शब्द ही परमेश्वर मतलब सारे कोई चीज
ही कोई चीज ही शब्दों का फेर
फेर बस
शब्दों का थोड़ा अंतर है अर्थ वही निकलेगा। हूँ रसोई है उन्होंने कोई रसोई कह देता कोई भंडार कह देता कोई लंगर घर कह देता अर्थ तो एक ही निकलेगा।
आकाश अपना कहने अभी खाली
हाँ खाली स्थान
कहने ये मतलब जी ये शब्द है ये विचारा तो रहता है जो उदो आकाश रूप है
बस
आकाश
दे विच कुछ है कुछ नहीं है कुछ नहीं है
वो बिल्कुल खाली है
वो खाली है
इस करके जिला शब्द विचारा तो खाली है उन्होंने आकाश रूप ब्रह्म कह दो
बस शब्द ब्रह्म ताई कहते
बस बस जब जी जीवन विचारा के
जीवन का
इसको चिदाभास कहते हैं
उसको ठीक है
चिदाभास कहते हैं दूसरी रह गई पहले नहीं
अभास उसको चिदाभास कहते हैं प्रतिबिंब तदा विद विदा प्रतिबिंब भी उसी प्रकार होता है चाहे चिदाभास कह लो चाहे प्रतिबिंब कह लो ही बिंब लक्षण ही न सन क्योंकि बिंब के स्वरूप से भिन्न होकर जो बिंबवत भासते बिंब की न्यायी भासता है सा वही प्रतिबिंब है उसी को बिंब बिंबावास चिदावास भी कहते हैं ਬਿੰਬਾ ਆਭਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਦਾਭਾਸ?
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ
ਆ, ਉਹ ਬਿੰਬ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ, ਪਰ ਬਿੰਬ ਦੀ ਲੱਛਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਹੁਣ ਹਿਲਦਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਬਿੰਬ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਬਿੰਬ ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਾਉਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਿਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿੰਬ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਭਾਸ ਕਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ ਵਹੀ ਲਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੇਂ ਵੀ ਘਟਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸੰਗਤਵਾਤ ਵਿਕਾਰਾਭਿਆਮ ਬਿੰਬ ਲਕਸ਼ਣਹੀਨਤਾ ਸਫੂਰਤੀ ਰੂਪਤਵਮੇਵ ਵਸਿਆ ਬਿੰਬਵਤ ਭਾਸਣਮ ਵਿਦੁ ਏਤਸਯ ਜਹ ਚਿਦਾਭਾਸ ਵਿਕਾਰਾਭਿਆਮ ਅਸੰਗ ਵਿਕਾਰੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਬਿੰਬ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗ ਔਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸੇ ਬਿੰਬ ਲਕਸ਼ਣਹੀਨਤਾ ਬਿੰਬ ਕੇ ਲਕਸ਼ਣ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਫੁਰਤੀ ਰੂਪਤਵਮ ਔਰ ਚਿਦਾਭਾਸ ਕੇ ਸਫੁਰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਵਿਦਵਾਨੋ ਨੇ ਬਿੰਬਵਤ ਭਾਸਨਮ ਵਿਦੁ ਬਿੰਬ ਕੀ ਨਿਆਈ ਭਾਸਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਭਿਆਮ ਅਸੰਗ ਵਿਕਾਰੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਬਿੰਬ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਸੰਗ ਔਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਰਿਓਮ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਲਾਰ ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਜੀ
ਅਸੰਗ ਔਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਏ
ਅਸੰਗ ਵਿਕਾਰੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ
ਸੁਸੰਗ
ਸੁਸੰਗ
ਸੁਸੰਗ ਸੁਸੰਗ ਔਰ ਵਿਕਾਰੀ
ਦੂਸਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਚਾਹੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸੇ
ਸਤਸੰਗ
ਹੈ ਵਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨੀ ਉਹ ਅਸੰਗ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿੰਬ
ਬਿੰਬ ਲਕਸ਼ਣਹੀਨਤਾ
ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸੇ ਬਿੰਬ ਲਕਸ਼ਣਹੀਨਤਾ ਬਿੰਬ ਕੇ ਲਕਸ਼ਣ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਫੁਰਤੀ ਰੂਪਤਵਮ ਔਰ ਚਿਦਾਭਾਸ ਕੇ ਸਫੁਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਵਿਦਵਾਨੋ ਨੇ ਬਿੰਬਵਤ ਭਾਸਨਮ ਵਿਦੁ ਬਿੰਬ ਕੀ ਨਿਆਈ वासना जाना है अर्थात कहा है बिंब की तरह है वो विद्वानों ने की कहा है वो जरा सीधा भाष है उन्हें की क्या है बिंबवत भाषणम विदुहु बिंबवत बिंब की तरह है वो बिंब नहीं है वो प्रकाश देखो
सत्ता
तो प्रकाश
कर सत्ता ज्ञान कराओ सत्ता प्रकाश कर जी प्रकाश कर
पूर्वोक्त प्रकार से चिदाभास की प्रयोजकता का निवारण करके अब बुद्धि के पृथक चिदाभास का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष उठाते हैं उत्तरा अर्थ से उसका उत्तर भी कहते हैं ना ही दीन मान भावत्वाद भासोस्ति दिया पृथक इति चेत अल्पमेवोक्तम धीरपेव स्नेह तथा धीमान भावत्वात् बुद्धि के अस्तित्व के अधीन चिदाभास का अस्तित्व होने से किदे अधीन है बुद्धि चिदाभास का अस्तित्व
बुद्धि के लिए
बुद्धि के क्यों तू जरा कांड से प्रतिबिंब पह रहा शीशे निकल के वो किदे अधीन है शीशे दे शीशा ना हो तो शीशा ना हो दीवार से कितों पऊगा केड़े दिन होया शीशे से ये जरा चिदाभास है केड़े दिन होया बुद्धि
बुद्धि
हाँ बुद्धि रूपी शीशा बुद्धि रूपी शीशा हम इतने वो शीशा खड़ी है बुद्धि रूपी शीशा चल रही है बुद्धि रूपी शीशा जरा है वो केड़े अधीन हो गया प्रति चिदाभास है बुद्धि के
चिदाभास बुद्धि के अधीन है
हाँ बस बुद्धि के अस्तित्व के अधीन चिदाभास का अस्तित्व मैंने सत्ता अस्तित्व मैंने है पना जिन कहने बुद्धि है तो चिदाभास है बुद्धि नहीं है तो चिदाभास भी नहीं है उन्हें कहते अस्तित्व होने से बुद्धि होने पर चिदाभास होता है बुद्धि ना हो तो चिदाभास नहीं होता जो सुषुप्ति में बुद्धि लीन हो जाती है फिर चिदाभास कितने रहता इस प्रकार अन्य वितरेक युक्ति से आभास दिया पृथक जय चिदाभास बुद्धि अर्थात अंतःकरण से अलग ना ही अस्ति इति चेत ना ही है यदि ऐसा कहते हो तो अल्पम एव उक्तम तुमने थोड़ा सा ही कहा है अल्प माने
थोड़ा
अल्पहार स्वल्प सुनिद्रा अल्पहार माने थोड़ा खाओ स्वल्प सी निंद्रा स्वल्प बने थोड़ा होंदा थोड़ा सा ये जेडे कई संस्कृत के शब्द पंजाबी च भी आउंदे पर सानू अर्थां दा नहीं पता अल्प तो ही सोचदे पता नहीं अल्प दा की अर्थ अल्पहार स्वल्प सी निंद्रा थोड़ा खाओ थोड़ा सा तुमने थोड़ा सा ही कहा है जी अपी स्वदेहता बुद्धि भी अपने स्थूल शरीर से एवं उसी प्रकार पृथक नहीं है यह भी तो कहना चाहिए क्योंकि स्थूल शरीर से अलग करके बुद्धि का दर्शन नहीं होता स्थूल शरीर नु अलग कर दो तो बुद्धि कितने काम करूगी भी बुद्धि नु जैसे कोई बंदा है उन्हें बैठने वास्ते कमरा दोगे ऑफिस दोगे ता ही तो काम करेगा ऑफिस ना दोगे बैठने जगह ना दो तो काम कैसे करेगा हाँ ऑफिस चाहिए ना ता ही तो अफसर काम करेगा अधिकारी हो निर्णय करने वाला है और जज नु अदालत च कुर्सी ना उसे बैठने जगह ना तो कैसे सड़क पे बैठ के फैसले करेगा कहते बुद्धि का ऑफिस है शरीर स्थूल शरीर जरा इस तो बगैर बुद्धि कितने रहेगी बुद्धि एवं उसी प्रकार पृथक नहीं है यह भी तो कहना चाहिए क्योंकि स्थूल शरीर से अलग करके बुद्धि का दर्शन नहीं होता उक्त अर्थ का परिहार के ऊपर आशंका करके पुनः समाधान कहते हैं देहे मृते हेपि बुद्धिश्चेच्छायन्नपि दस्ति तथा सति बुद्धे अरण्य अरण्यस्तिदावास प्रवेशा श्रुतिषु श्रुता। देह मृते अपि बुद्धि अस्ति। अजी बच्चे नु स्कूटर मोटरसाइकिल भी थोड़े उम्र के हिसाब ना लैके देने चाहिए ना।
हाँ
जी हाँ जी। हाँ? बच्ची पता ही नहीं है जी। देह मृते अपि बुद्धि अस्ति। देह के नष्ट होने पर भी अंतःकरण है। देखो शास्त्र शास्त्रपात चेत यदि यह बात शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, यदि ऐसा मानो मानते हो तथा सती, तब तो श्रुति प्रमाण से स्थूल शरीर से अतिरिक्त बुद्धि को यदि स्वीकार करते हो तो बुद्धे अन्य चिदाभास बुद्धि से भिन्न चिदाभास प्रवेश श्रुतिषु परमात्मा का जीव भाव में शरीर आदि में प्रवेश को कहने वाली श्रुति में श्रुतः सुना गया है, अर्थात कहा गया है, इसलिए श्रुति प्रमाण से चिदाभास को पृथक मानना चाहिए। की कहते हैं आंदे पहला दस्या सी ना श्रुति दे विच आया कि ब्रह्म ने भगवान ने शरीर बनाया ते ओदे विच फिर प्रवेश किया। हुण तुसी पार्लीमेंट देखिया होएगा जां सुनिया होएगा, देखिया नहीं तो ते पार्लीमेंट दे विच देखिया ते आपां भी नहीं सुनिया ही आ। आम जिहड़े एमएलए उन्हां दा जाण दा रस्ता अलग है, प्रधानमंत्री दा दरवाजा अलग है, राष्ट्रपति दा दरवाजा अलग है। ऐसे ही ये शरीर है, इहदे विच जिहड़ियां इंद्रियां है उन्हां दा द्वार निकलण दा अलग है और बाकी चीजां दा द्वार अलग है। प्राण दा द्वार अलग है, प्राण ने जिथों प्रवेश कीता सी उथों ही निकलेगा तो मुक्ति है, अगर अवस्थान तो निकल गया तो मुक्ति नहीं है। हुण शरीर की परम गति केड़ी है, दसवें द्वार च श्वास निकल गया जी मुक्त हो गया, बाकी किसी द्वारे च श्वास निकलिया तो मुक्त नहीं, निचले चो निकलिया तो सीधा ही यमराज भाग, उपरले चो निकलिया दुर्गति भी नहीं होगी, जन्म दोबारा होगा, अपने पुण्य कर्म भोग के फिर आएगा। जैसी जैसी इंद्रिय है मुंह चो निकलेगा ये भी गंदी है, इच्छो निकलेगा ये गंदी है, अखा च निकलेगा और शुद्ध है, कन्ना च निकलेगा और शुद्ध है, तो नीचे वाली इंद्रिया च निकलेगा तो फिर तो पक्का ही नर्क। तो जिथों प्रवेश किया है उथों निकले, कितों प्रवेश किया दसवें द्वार चो, तो दसवें द्वार चो प्रवेश किया है तो दसवें द्वार चो निकलेगा फिर मुक्ति है, नहीं तो उलझ गया अगर गया तो इतों की से नौ द्वारे पता नहीं किधर निकल गया, फिर उलझदा है जी। और जी समाधि है भजन करना सिमरन करना ध्यान करना यदा तात्पर्य की है, साडा जोड़ा सुभाव है ना प्राणा का उपर उर्दमुखी हो जाए, उर्दमुखी होने का की तात्पर्य है, मरने पर नीचे वाले द्वारा च प्राण ना किधर निकल जाए, इन्हों उपर चढ़ा के रखो उर्दमुखी रखो, उर्दमुखी रखांगे तो कम से कम इथों निकलेंगे उपरों इथों थले थले तो चलो दुर्गति तो ना हो जन्म तो लेने पे तो जे कि इथों निकल गए फिर तो फिर कहने क्या है। ये वो कह रहे हैं इसलिए सुरती प्रमाण से चिदाभास को भी पृथक मानना चाहिए। इसलिए जरा सुरती का प्रमाण है कि चिदाभास जरा है ना वो बुद्धि तो अलग है, सा विज्ञानो भवती इस शास्त्र प्रमाण से ये भी श्रुति है, सा विज्ञानो भवती वो कौन है विज्ञानमय कोश है ना विज्ञानो भवती हाँ अनेना जीवे न आत्मना अनु प्रविश्य इस श्रुति प्रमाण से अनेना वो जरा परमात्मा सी जीवे न जीव दे जरा सी वह जीव रूप च प्रवेश कर गया ते जिथों प्रवेश किया है उथो निकलेगा ते तां गतिजे बुद्धि रूप आदि वाले का ही प्रवेश युक्त है बुद्धि रहित का नहीं ऐसी शंका करके उत्तर कहते हैं दीयुक्तस्य प्रवेशश्चेत् नात्रेयो दीह पृथक आत्मा प्रवेशम संकल्प्या प्रविष्ट इति गीयते दीयुक्तस्य दी माने बुद्धि बुद्धि रूप उपाधि युक्त चिदाभास का प्रवेश शरीर के अंदर प्रवेश मानना ठीक है केवल चिदाभास का नहीं चेतना यदि ऐसा कहते हो तो वह ठीक नहीं इतरे क्योंकि इतरे इतरे देखो दो उपनिषद है इतरे और तेतरे एक तुसी पुस्तक लाओगे उदे च नौ उपनिषद आउंदे आ उदे च दोनों उपनिषद आउणगे इतरे तेतरे मंडुक मांडुक और प्रश्न उपनिषद ईशावास्यम कठोपनिषद ऐसे करते दीया पृथक बुद्धि से अतिरिक्त अर्थात बुद्धि रूप उपाधि रहित आत्मा प्रवेशम संकल्प आत्मा परमात्मा प्रवेश का संकल्प करके प्रविष्टम इति गीयते शरीर के अंदर प्रवेश कर गए इस प्रकार कहा गया है परमात्मा ने संकल्प किया मैं इस विच प्रवेश करूं तो प्रवेश कर गए शरीर तो फिर जिथों भी प्रवेश किया उथों भी निकलेगा तो गल बन गई और कितने निकल गया तो फिर इतों तक सब धोखा खा जाते जितों नहीं निकलिया नीचे द्वारा च निकलिया तो क्यों निकलिया नीचे द्वारा चो क्यों जो जीव का ध्यान ही सदा नीचे रहा मतलब पाप कर्मा च तो जे थोड़ा पुण्य कर्मा च ध्यान रहेगा तो फिर इन्हें चो निकलेगे प्राण तो जे पुण्य कर्मा तो नहीं पाप पुण्य तो उपर उठ गया तो फिर इतों निकलेगा टीका हो गया ना उसी श्रुति का अर्थ पाठ करते हैं कथम त्रिदम साक्ष देहम मृदे ते स्यात इति रणता अरणात विधिरिया मूर्ध्या सीमानम प्रविष्टः संसरा संसरत्ययम् अयम जह परमात्मा साक्षात देहम इंद्रिया और शरीर सहित इस जड़ प्रपंच वृत्ति दे मुझ चेतन के बिना कथम नु स्यात कैसे ठहरेगा इस प्रकार विचार करके ऊर्धा सीमानम मस्तक स्थित तीनों पलकों के कपालों के मध्य देश को दीर्ण प्रविष्ट भेद भेदन करके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया देखो ये जी कपाल है ना कपाल मैंने खोपड़ी ये तीन भाग है ये तीन भाग है वो तीन भाग जिथे जोड़ते उन्होंने कहते हैं दसम द्वार तिना भागा की क्या इसे की लिखा है वधीरना तोड़ के तोड़ करके ते प्रवेश कर गया किथे प्रवेश कर गया शरीर च कि जिसे तीन कपाल जोड़ दिया तीन कपाल मने ये भाग के खोपड़ी ये तीन भाग हां ये तीन भाग जिथे जुड़ दे ना उन्होंने कहते दसवा द्वार उथो प्रवेश किया ब वेदन करके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया संस्कृति और तब संसार गति को प्राप्त हुआ। देखो सने सने संस्कृति की संसार एक अंदरता पहला अर्थात जागृत आदि अवस्थाओं को अनुभव करने लगा। इति ईरणात इस प्रकार ऐत्रेय उपनिषद ने कहा है इसलिए बुद्धि सहित आत्मा का प्रवेश मानना चाहिए
नहीं
मानना चाहिए क्योंकि उदो बुद्धि थोड़ी सी जो परमात्मा ने प्रवेश किया उदो बुद्धि नहीं सी। ये कह रहा असंग आत्मा का प्रवेश ही युक्ति विरुद्ध है ऐसी अशंका श्लोक के प्रथम पाद से कहते हैं और द्वितीय पाद से समाधान कहते हैं। कथम प्रविष्टो असंगश्चेत् सृष्टिवाच्य कथम वद मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः। असंग आत्मा असंग है इसलिए कथम प्रविष्टा उसने शरीर में प्रवेश कैसे किया। तुसी कहंदे आत्मा असंग है और सर्वत्र व्यापक है ते फिर जिथे प्रवेश किया उथे नहीं सी आई संग कैसे कर लिया उन्हें असंग है। चेत यदि ऐसा पूछते हो तो अस्य सृष्टः वा कथम इस असंग परमात्मा के द्वारा जगत का सृजन कैसे हुआ वद कहो। अंदर जी ये गल है तो फिर ये दस ना असंग परमात्मा ने सृष्टि कैसे करती। ये असंग परमात्मा ने माया का आश्रय लेके सृष्टि कर दी तो माया का आश्रय लेके प्रवेश नहीं कर सकता। सृष्टिकर्ता माइक होने से उसके द्वारा सृष्टि बन सकती है ऐसी शंका का परिहार प्रवेश कर्ता को भी माइक मानकर करते हैं। तयोः माइकत्वं तुल्यं प्रवेश और सृजन के विषय में परमात्मा की माइकता समान ही है। कहने का तात्पर्य कि जो सृष्टि रची उदो भी माया का आसरा लिया सी अंगीकारी की नहीं माया माया ने अंगीकार अपने अंगीकार मने अधीन करके असी कहते अधीन माया से फर्क इतना ही है जीव जड़ा है वो माया के अधीन है परमात्मा माया नु अधीन करके प्रगट हुंदा है इनू इत्थे जीव पर आ जांदा है जो माया जेड़ा जीव है वो माया जो जन्म लेगा माया के अधीन हो लेगा माया अमर बरताया उन्हें अपना पाप प्रभाव दिखा दिता कि जेड़ा परमात्मा है वो माया नु अधीन करके प्रगट हुंदा है और प्रवेश करता और सृष्टि करता इन दोनों का विनाशः समः विनाश भी तुल्य ही है। विनाश के दा माहिक दा परमात्मा दा नहीं हुंदा। अब उपाधिकृत रूप से विनाश बनाने वाली सृष्टि का प्रतिपादन करते बस कर
Thank you.